सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व पर्यावरण दिवस, स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पर्यावरणविद और टेरी में निदेशक डॉक्टर सुनील पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरे विश्व में इसको जून 5 को हर साल मनाया जाता है ताकि हम इस बात के प्रति जागरूक हों कि पर्यावरण हम सभी की साझी धरोहर है और हरेक व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान है। इस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील पांडे, जो है डायरेक्टर सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट के टेरी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
डॉक्टर पांडे। आपसे जानना चाहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस का क्या महत्व है पूरे विश्व के लिए और खासकर भारत के लिए, कैसे देखते हैं आप, किस तरह की जागरूकता ये फैलाएगा और क्या हम इससे लाभ उत्पन्न होते हुए देख सकते हैं?
विश्व पर्यावरण दिवस जैसा आपने बताया 5 जून को हर साल मनाया जाता है और ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा शुरू किया गया। और इसकी जरूरत तब महसूस हुई जब हमने देखा कि हमारी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण। और आप अभी देखें तो हिंदुस्तान में ज्यादातर शहर जो है वायु प्रदूषण की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हमारी नदियां जो है प्रदूषित हो रही थी, हमारे तालाब प्रदूषित हो रहे थे, हमारी सॉइल पोल्यूट हो रही थी और उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे हेल्थ पे भी पड़ रहा था। अस्थमा के केसेस बढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे और हमारे ठोस कचरा प्रबंधन, हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी रेगुलेट करने के लिए जरूरत पड़ी कि जो है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की जाए। और 2018 के बाद से विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि प्लास्टिक हमारे डेली लाइफ का अभिन्न अंग है, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, अभी 2018 से हमने जो थीम यूएन ने उठाई है वो है प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे एड्रेस किया जाए। और इसलिए जो है हम हर साल जो है ये थीम पे जो है पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और इस पे एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसा आपने कहा कि कई एस्पेक्ट्स है पोल्यूशन के, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या इवन सॉइल पोल्यूशन, सॉइल को भी हम ऐसे हमारे कुछ एक्शंस होते हैं जिससे वहां पे उसकी क्वालिटी खराब होती है, तो आप हमें थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं कि कौन से ऐसे मेजर एक्शंस आप अंकित कर सकते हैं, एक जो कॉमन मैन है अगर उस पर नियंत्रण रखे तो हम जो पोल्यूशन है उसके लेवल्स को गिरता हुआ देख सकते हैं?
हमारे लेवल पे हमको जो है इंश्योर करना होगा कि जैसे हम अभी ट्रांसपोर्ट की बात करें, जैसे वायु प्रदूषण होता है तो अपने ट्रांसपोर्ट नीड्स को मिनिमाइज करें। जहां हम पैदल जा सकते हैं वॉक करके, जहां साइकिल से जा सकते हैं वहां साइकिल से जाएं, जहां हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। ऐसे ही जो है हम जो अपने पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली यूसेज में, उसको कोशिश करें कि कम से कम प्रदूषित हो, हम कम से कम जो है डिटर्जेंट और सोप इस्तेमाल करें जिससे कि जो है जल में प्रदूषण ना हो। और इंडस्ट्रीज जो है अपना कचरा जो निकालती हैं उसको ढंग से ट्रीट करके डिस्चार्ज करें जिससे कि जल का प्रदूषण मिनिमाइज किया जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये मंत्र दिया, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। आइए सुनते हैं।
वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ, लाइफ यानी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट, आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। लाखों साथियों ने रिड्यूस रीयूज रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा।
और आपने बात करी कि इस बार की जो थीम है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन, उसको कैसे कम किया जाए, सो आप हमें बता सकते हैं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स का हम काफी उसके बारे में चर्चा होती है कि ये बहुत हार्मफुल है, सो सिंगल यूज प्लास्टिक्स के बारे में आप बता सकते हैं क्या अल्टरनेटिव्स हैं? और पूरी तरह से तो हम प्लास्टिक्स का जो इस्तेमाल है उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग के क्या क्या हमारे पास कहें कि अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं?
सिंगल यूज प्लास्टिक एक्चुअली चर्चा में इसलिए आए क्योंकि ये जो है एक यूज के बाद हम थ्रो कर देते हैं चीजें, जैसे वाटर बॉटल है, खास करके छोटी बॉटल है, हमारे प्लास्टिक कटलरी है, प्लास्टिक चम्मच है, जो आइसक्रीम में प्लास्टिक स्टिक्स यूज होते थे, वो बलून्स में जो स्टिक यूज होते थे, फिर जो जूस में हम पीते थे उसमें जो स्ट्रॉ यूज करते थे प्लास्टिक के, इस तरह के आइटम सिंगल यूज के बाद हम फेंक देते थे। और फेंक देने के बाद हमारे जो वेस्ट कलेक्टर है इनको पिकअप नहीं करते हैं रिसाइकलिंग के लिए, ये बहुत छोटे और बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वो जहां फेंक देते थे वहां से फिर वो या तो लैंडफिल साइट चले जाते हैं या फिर वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, और अल्टीमेटली जो है वाटर बॉडीज में गए तो वो वाटर बॉडीज अगर सी में जा रही हैं तो वहां से सी में जाके मरीन पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे। और जो स्टडीज हैं इंटरनेशनल ग्लोबल स्टडीज, उन्होंने बताया कि जो 80% कचरा जो है समुद्र में जो जा रहा है वो प्लास्टिक है, और ज्यादातर प्लास्टिक वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो इसलिए जो है सिंगल यूज प्लास्टिक की चर्चा हुई, और 2022 में गवर्नमेंट ने कुछ 19 आइटम्स जो है वो उन्होंने कहा कि ये जो है हम सिंगल यूज प्लास्टिक इनको हम फेज आउट कर रहे हैं, और हम लोगों से वो आग्रह करेंगे कि न तो इसको बनाएं न इसका यूज करें। इसमें एक सिंगल यूज प्लास्टिक अपने पॉली बैग्स भी हैं, पॉलीथिन बैग्स जो हम यूज करते हैं, और काफी लोग हमने देखा कि जो है आजकल क्लॉथ बैग, जूट बैग, इस तरह के बैग यूज करने लगे हैं और वो जो है पॉली बैग यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से कटलरी आइटम्स जो है उसमें कटलरी आइटम्स जो है वुडन बेस्ड कटलरी आइटम्स बनने लगे, बायो बेस्ड कटलरी आइटम्स बनने लगे, पत्तल दोने जैसे पहले चलते थे वो फिर से यूसेज में वापस आए, और पेपर कप्स जो है यूसेज में वापस आए। तो इस तरह की चीजें जो है हम वापस इस्तेमाल करने से हम जो है अननेसेसरी प्लास्टिक वेस्ट है जो हम जो अवॉइड कर सकते हैं उनको जो है रिड्यूस कर सकते हैं। और जहां तक रिसाइकलिंग की बात है, रिसाइकलिंग में अगर हम प्लास्टिक वेस्ट जो है जैसे दूध की थैलियां हैं, तो कंटेनर्स हैं, इनको हम अगर साफ सुथरा अलग से कलेक्ट कर सकें तो इनको फिर से उस प्रोडक्ट में रिसाइकल कर सकते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी है। बट सवाल ये है कि हम प्लास्टिक वेस्ट सेग्रीगेट करें और उसको कंटेमिनेट ना करें और उसको फिर कलेक्ट करके रिसाइकलिंग के लिए भेजें। और जो बहुत पतली पन्नियां हैं, जो बहुत और चिप्स वगैरह के पैकेट हैं जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, उनको सरकार ने बताया कि रूल के हिसाब से उनको पतला छोटा छोटा श्रेड करके रोड मेकिंग में इस्तेमाल करें, या उनका जो है वो ब्रिकेट्स बना के उनको जो है हम सीमेंट प्लांट्स में एज अल्टरनेट फ्यूल भेजें, जहां वो कोल की जगह जलाया जा सकते हैं, तो कोल का कंजम्पशन हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से तो हम वेस्ट की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम CO2 एमिशन भी रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ये क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोसेस है। तो इस तरह से जो है हम ओवरऑल प्लास्टिक को मैनेज कर सकते हैं।
डॉक्टर पांडे, पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई योजनाएं लाई गई जिन्हें बहुत सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया गया। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, एक पेड़ माँ के नाम योजना जिसमें हमारे जो फॉरेस्टेशन है उसकी तरफ एक ठोस कदम हर एक नागरिक को मोटिवेट किया गया कि उठाया जाए। सो क्या लगता है आपको, जो ये हम राष्ट्रीय तौर पर जो अटेम्प्ट्स किए गए हैं, बहुत अथक प्रयास किए गए हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने में, उस सबको देखते हुए आप हमें कहाँ पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अगर हम बात करें जो गोल्स होते हैं इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने कमिट किए थे, उसकी अचीवमेंट में अभी तक जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं?
बिल्कुल, जैसे एक पेड़ माँ के नाम तो काफी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जी का, और इसका काफी पोटेंशियल है। जैसे हमारा सोशल फॉरेस्ट्री जिसको हम बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री, अगर हम लोग सब लोग एक एक पेड़ लगाने लगे और ये इंश्योर करें कि वो पेड़ सर्वाइव करें, तो हम जो है हमारे अर्बन एरियाज में जो प्रॉब्लम होता है खास करके गर्मियों में अर्बन हीट आइलैंड, हम लोग जो एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं उसकी वजह से, उसको एड्रेस कर सकता है क्योंकि हमारे पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और इस तरह से जो है गर्मी को कम करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ऐसे ही जो है सरकार की जो योजना थी LPG डिस्ट्रीब्यूट करने की, और जो है सरकार की योजना सोलर रूफ टॉप की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सोलर पावर जनरेट करने की, विंड पावर जनरेट करने की। इससे हमको दोहरा फायदा होता है, हेल्थ बेनिफिट होता है, जो महिलाएं हैं जो अदरवाइज गंदा बायोमास बेस्ड फ्यूल यूज कर रही थी या जो हमारे ढाबे वगैरह हैं जो कोयला यूज कर रहे थे, वो जो है अब स्वच्छ ईंधन यूज कर रहे हैं, स्वच्छ फ्यूल यूज कर रहे हैं, और जो एयर पोल्यूशन पहले हो रहा था वो एयर पोल्यूशन अब नहीं हो रहा है, और एयर पोल्यूशन से जो रिलेटेड बीमारियां हो रही थी जैसे महिलाओं को कैटरेक्ट हो रहा था, रेस्पिरेटरी इलनेस हो रही थी, अस्थमा हो रहा था, वो जो है इनमें सडनली कमी आएगी। तो ये इनिशिएटिव्स जो है ओनली हमारे जो SDG गोल्स हैं उनको मीट करने में मदद मिलेगी, बट इससे जो है हेल्थ इंप्रूवमेंट भी काफी होगा, और खास करके 12 देखें SDG 12 जो सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में है वो जो है मीट करने में काफी मदद मिलेगी, और क्लाइमेट चेंज बेनिफिट भी इससे होगा हमको।
इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जो हमने टारगेट्स दिए थे शॉर्ट टर्म टारगेट्स, हम उसको ओवर अचीव कर चुके हैं। अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, जिससे आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, हमें बता सकते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने में किस तरह से ये सहायक है, और वेस्ट मैनेजमेंट कितना एक महत्वपूर्ण पहलू है?
सर्कुलर इकोनॉमी जो है, जैसा नाम सजेस्ट करता है, क्योंकि अभी तक जो हम प्रोडक्शन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ज्यादातर जगह इसको हम लीनियर इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ की हमने प्रोडक्ट बनाया, इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट बनाया, लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, और जब उसका इस्तेमाल खत्म हो गया तो उसको डिस्पोज कर दिया। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि जब हमारा प्रोडक्ट जो है, हमने प्रोडक्ट लिया और जब वो प्रोडक्ट जो है उसका यूज खत्म हो गया या वो वेस्ट हो गया या खराब हो गया, तो उसको जो है हम फेंके नहीं, डिस्पोज नहीं करें, और उसमें से जो वैल्यूएबल मटेरियल है उसको निकालें, उसको रिसाइकल करें, रीयूज करें। जैसे हमारे पास ई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कॉपर होता है, लेड होता है, एल्युमिनियम होता है, तो उसको हम जो है एक्सट्रैक्ट करें, रिसाइकल करें, प्लास्टिक है, और ये इंश्योर करें कि जो है मिनिमम अमाउंट हमारा जो है वो हम डिस्पोज करें। तो ये होता है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब कि जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है, और ग्लोबली जो हम यूज करते हैं वो जो साल भर में हमको यूज करना है वो 7 महीने में ही खत्म हो जाता है। तो नेचुरली जो है हम जो नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर में, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी को अडॉप्ट करके हम ये रिसोर्स कंजम्पशन, अपना नेचुरल रिसोर्स कंजम्पशन जो है हमारे वर्जिन सोर्सेस है उसको कम कर सकते हैं, और जो हमारे रिसोर्स जो ऑलरेडी यूज में है उसको हम बार बार यूज करके उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, उनकी रिसाइकलिंग और रिकवरी कर सकते हैं। इस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी जो है हेल्प करता है। और वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज हम जितना मटेरियल रिकवरी करेंगे और जितनी ज्यादा रिसाइकलिंग करेंगे उतना हमारा वर्जिन मटेरियल या फ्रेश मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। तो इससे ना तो माइनिंग की हमको उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तो सारे रिसोर्सेज माइनिंग से आते हैं, उसमें जो है एमिशन भी कम होगा और उससे जो है क्लाइमेट गोल्स भी हमारे मीट होंगे। तो इसलिए सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसोर्स मैनेज करने के लिए ओवरऑल।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण संरक्षण पर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
हमारे सामने जो सारा विषय रखा गया है उसमें सबसे बड़ी बात है हाउ टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट। इसका एक ही रियल सॉल्यूशन है, और वो प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र हमको दिया है वो है मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में भी हमने देखा, उन्होंने कहा कि इस वर्ष की जो थीम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब ये जो प्लास्टिक है ये वास्तव में मनुष्य ने इसको आविष्कार किया है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, और नेट जीरो की बात भी जब हम करते हैं, भारत के नेट जीरो 2070 के अभियान की भी बात हम करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि नेट जीरो में हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन का सोर्स है वो नेचर ही है। नेचर से लगी हुई कोई चीज कभी वेस्ट नहीं जाती। नेचर में कोई फल भी लगेगा, पक्षी खाएगा, अगर फल गिर जाएगा तो वो फल खाद और बीज में हो जाएगा और नीचे जाएगा, फॉसिल फ्यूल बन जाएगा। नेचर नेट जीरो का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन मनुष्य जो पैदा करता है वो नेट जीरो नहीं होता, वो गार्बेज के रूप में बदल जाता है, और प्लास्टिक इसका सबसे बड़ा कारण है।
सो आपको लगता है कि भारत जैसे अब चौथी सबसे बड़ा इकोनॉमी है पूरे विश्व में, डिफेंस, स्पेस, अलग अलग सेक्टर्स में हमने एक लीडरशिप रोल गेन किया है, आपको लगता है कि विश्व मंच पर हम जलवायु चैंपियन बनने की ओर भी बढ़ रहे हैं, अभी तक के हमारे जो टारगेट्स हमने अचीव किए हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए?
बिल्कुल, हमने करके दिखाया है रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी प्रोग्राम्स में, कि जो है कैसे दूसरे देश हमसे सीख के जो हमने किया है वो भी कर सकते हैं, और कैसे जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भारत जो अभी कर रहा है इसमें एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट लीडरशिप लेने की पूरी संभावना है कि भारत ले सकता है।
डॉक्टर पांडे, विश्व पर्यावरण दिवस पर इस प्रेरणात्मक और समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पर्यावरणविद और टेरी में निदेशक डॉक्टर सुनील पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में